उसने कहा मैं तेरे पिता से दो वरदान मांग लिए, एक वरदान में तो तेरे लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास। पिता की आज्ञा को चिरधारी करके कि वो राम जो है सो मन को चला गया। उसका भाई भ्रातृ प्रेम दिखलाता हुआ और उसकी स्त्री पातिव्रत धर्म को दिखलाती हुई उनके साथ सो चले। उनके वियोग में तेरे पिता की मृत्यु हुई। हा राम हा लक्ष्मण हा सीता। ये सुनने के साथ जो है मूर्छित होकर के गिर गए भूमि के बीच के मन। इस प्रकार से गिर गए जैसे नदी के किनारे का वृक्ष और जड़ कचरे से भी गिर जाता है। तो ये कथा वाल्मीकि रामायण में आती। थोड़ी देर के बाद के बीच में होश आते के कहा कि दूसरा तो कौन है, तू उसको बतला तो सही, तू अपना मुंह काला करके के और यहां से चले जा। तुम्हारे को मालूम है तू जो अभी तक जीते हो ये भगवान राम की कृपा से जीती हो। मैं तलवार से तुम्हारा मस्तक काट डालता अभी गोली काटता हूं कि मैं तुम्हारे को मार डालूंगा तो राम सदा के लिए मेरा त्याग कर। इस वर्ष में तेरे को नहीं मारता हूं। राम ने तेरा क्या बिगाड़ किया? राम तो किसी का बिगाड़ करते ही नहीं, राम को वन में भेज कर करके। और क्या तू मेरे द्वारा राज का सुख भोगना चाहती है तो तेरा मनोज सब नहीं होगा। जैसी तेरी मां थी जैसी तू निकली। इस प्रकार से बहुत सी खोटी बातें सुनाई। इतने के जिसके मां वो कुबजा सो आ गई, नाना प्रकार का श्रृंगार करके नाना प्रकार का आभूषण पहन करके वो समझो रेशमी वस्त्र पहन करके और साथ में कुबजा के भी कई दासियां वे भी उनकी सेवा के मां रहती थी। वो दासियों की भी दासी थी। वो दूर से आ रही थी। उस समय की मां संतरी ने कहा कि ये सब कार्रवाई इस कुबजा की, वो सब नाना प्रकार का आभूषण पहन करके आ रही है। उसको देख करके समझो कि शत्रुघ्न जी दौड़े और दौड़ के उसकी चोटी पकड़ के और घसीटने लगे और जमीन के ऊपर पटकने लगे और लातों से मारने लगे। जब लातों से मारने लगे उस समय के मां कुंजा ऐसे बोली कि कैसे मैं तेरा जो उपकार किया उसके बदले में क्या मुझको ये पुरस्कार मिलता है? ये सुनकर के उसकी रक्षा के वास्ते केकई उसको छुटाने के लिए वहां से आ रही। केकई को देख करके और शत्रुघ्न जी उस मंजिल बिगड़े। बोला आप जो इसकी मैं दशा करता हूं वो तेरी दशा करूंगा। जब ये सुना केकई ने तो केकई लड़ गई वापिस। जब उसको खून मारने लगी उस समय की मां शत्रुघ्न को ये शत्रुघ्न को देख करके भरजी ने यह कहा कि शत्रुघ्न इसको तुम जान से नहीं मारना, जान से मार डालोगे तो श्री रामचंद्र जी की तुम्हारा रामचंद्र जी तुम्हारा क्या कर देंगे सदा के वास्ते, क्योंकि असली हत्यारा समझ करके तुम्हारा क्या कर देंगे। तो इस प्रकार से उसकी वो बात सुन करके के और भरजी अपने जब ये बात कही तो शत्रुघ्न ने उसको छोड़ दिया। फिर दोनों भाई वहां से कौशल्या के भवन में जाने का विचार किया। कौशल्या ने यह बात सुनी कि भरत शत्रु ननिहाल से आए तो वो कैसे उसकी प्रतीक्षा कर सकती है। कौशल्या अपने भवन से नीचे उतर कर के और कई दिन जो भवन को आ गए भरत और शत्रु केकई के भवन से उतर करके के और कौशल्या से मिलने को जा रहे। रास्ते में भेंट हो गई। दोनों भाई कौशल्या के चरणों में गिर गए। माता कौशल्या ने उनको गोद में लेकर के और उनके आंसुओं को पूछने लगी और सबको रोने लगी। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा तेरी माँ की तंगी सब सुन हो गया और ये कहते कि माँ ये कह करके मेरे युद्ध को जलाओ हो मैं सर सुन चुका हूं किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माता केकई के मत में मेरा मत नहीं यदि केकई के मत में मेरा मत हो तो विशेष की हत्या करने से और अनुमति की हत्या करने से जो पाप लगे वो पाप मुझको लगे गायों के झुंड को आग लगाने से जो पाप लगता है उस पाप का भागी मैं हूं यदि राम के वन में जाने में मेरी सम्मति हो भूत और प्रेतों की पूजा करने से जो दुर्गति होती है वह दुर्गति मेरी हो कि यदि राम के वन में जाने में मेरी कहीं सम्मति हो बहुत सी सोगन शपथ खाई उस समय में माता कौशल्या ने कहा कि बेटा मैं जानती हूं तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है जो कोई तुम्हारे ऊपर इस दोष को लगाएगा वही पाप का भागी होगा और तुमने जो शपथ खाई है उस शपथ का दंड उसको मिलेगा मैं जानती हूं बेटा जब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बन को गए उस समय के बीच के मां श्री राम वन में जाने के समय में कह गई थी मां मेरे से भी बढ़कर मेरा भाई भर तेरी सेवा कर बेटा आज मैं प्रत्यक्ष देख रही हूं मैं किसको दोष दूं मैं केकई का दोष है और मैं मंथरा का दोष है ये मेरे भाग्य का दोष है मैंने पूर्व के मां कोई पाप किया था इस पाप का यह फल मुझको सो मिला इस प्रकार से थी वे सब रोने लगे माता अंचल से उनके हंसों को पूछती है उसके बाद मां ने कहा बेटा जो होनहार था जो होनहारी बात हो गई अब तो पिता की उर्द क्रिया करो तो पिता की उर्द क्रिया माता का हुक्म मान करके उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार की जैसे अपने दशकात्र होते हैं जैसे दान बलि सपिंडी शराब आदि सब क्रिया समाप्त होने के बाद के बीच के मां सब सभा इकट्ठी हुई सभी सभा इकट्ठी होकर के सबकी तरफ से थी वशिष्ठ जी बोले कि माताओं की आज्ञा है अब मंत्रियों की सबकी सम्मति है और प्रजा उत्साह पूर्वक उत्सव देखना चाहती है सब कोई चाहते हैं तुम्हारा रात तिलक का उसे देखना और आज का दिन बहुत अच्छा और सब तीर्थों का जल लड़ा हुआ मधु सब सामग्री मधु राम के राजा विशेष के लिए सब सामग्री तैयार की गई थी तो आज के दिन ही तुम्हारा तिलक हुआ ये सबकी राय है माता कौशल्या ने कहा कि बेटा जो वशिष्ठ जी कहते हैं वो बात प्रसन्नता से तुम्हारे को स्वीकार कर लेनी चाहिए हमारी सबकी आज्ञा है आज्ञा ने बड़ी प्रसन्नता है ये काम आज हो जाना चाहिए ये सुनकर के भरजी रोने लगे भरजी ने कहा कि आप सबने जो बात कही आपकी दृष्टि से मेरे हित की बात ही कही किंतु इसमें मुझको मेरा हित नहीं दिखता मैं आपकी बात को नहीं मानता हूं ये बड़ा अपराध करता हूं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं किंतु मेरे बस की बात नहीं है आपकी आज्ञा पालन करने में मैं लाचार हूं और आपकी आज्ञा पालन में मुझको कोई लाभ भी नहीं दिखता मैं इसमें आपका लाभ होने मेरा किसी का भी लाभ नहीं दिखता मुझको राजा बनाने से न मेरा हित है और न आप किसी का हित है इसलिए आप मुझको क्षमा करें मेरी तो ये इच्छा है कि हम लोग कल ही यहां से चित्रकूट को चलें और अनुनय विनय करके के प्रार्थना करके श्री राम को वापिस लौटा करके जाऊं वही राजा होने के योग हैं हमारे रघुकुल की रीति भी आई है जो बड़ों के रहते छोटा राजा नहीं हो सकता रघुनाथ जी ही राजा के सब प्रकार से पात्र हैं। आप सबको मुझको इस विषय में मदद करें। सब सुनकर के खुश हुए बाप। यदि एक प्रकार से थी भरत का जन्म नहीं होता तो आज प्रत्यक्ष प्रेम को प्रकट कर करके कौन दिखलाता। सबने ये बात स्वीकार की और कल प्रातःकाल ही वहां वन में जाने के लिए तैयार हो गए। जब दूसरे दिन वन के जाने की तैयारी हुई उस समय के बीच के वहां भरत जी पादे पाव यार ये देख करके कि किसी की हिम्मत नहीं उसको मना कर सके। सब दौड़ करके माता कौशल्या के पास आए। कौशल्या से कहा कि भरत और किसी की बात नहीं मानेगा और तुम्हारी बात को नहीं टाल सकेगा। भरत जी पैदल जा रहे हैं और पैदल चलने के मां एक तो सब पैदल चलेंगे तो सबको कष्ट होगा और समय अधिक लग जाएगा। तो आप चल करके भरत को समझाओ। तो सबके आग्रह करने पर माता अपनी पालकी भरत के पास में जाई। बोली बेटा एक मेरी आज्ञा का तेरे को पालन करना पड़ेगा। वो आज्ञा यह है कि तुम अश्वारी पर चलो। तो भरत ने कहा कि माँ हमारी ज्येष्ठ भ्राता राम पादे पाव गई हैं तो मेरा तो यह कर्तव्य है कि मैं सिर के बल जाऊं किंतु सिर से चल नहीं सकता इसलिए पैदल ऐसे जाता हूं और मैं आपकी आज्ञा का बारंबार उल्लंघन करता हूं ये बड़ा पाप करता हूं। राज पाने के वक्त में आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया और अभी मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो आप दुखिया तो हो और दुखिया को और अधिक दुख देना होगा। मेरा कर्तव्य तो यही है कि मैं एक प्रकार से पादे पाव जाऊं किंतु आपकी जब आज्ञा है तो मैं सवारी कर लेता हूं। तो भरती सवारी पर चलने लगे सबको सवारी पर चलने लगे। इस प्रकार से थी चलते चलते जब सिंहजीपुर आए और चतुर्मी सेना सात के बीच के मां ये देख करके गुरु ने विचार किया कि क्या बात है। सुना कि भरत जी शत्रुघ्न सेना लेकर के वो चित्रकूट को जा रहे हैं। उसने सोचा कि शत्रुघ्न सेना की क्या आवश्यकता है। यदि भरत जी का भाव शुद्ध है तो उसको तो एक प्रकार से थी सादगी से जाना चाहिए। तो शत्रुघ्न सेना लेकर के जा रहे हैं उनके मन में कहीं पाप तो नहीं है कि राम लक्ष्मण को मार करके के वो निष्कंटक अमराज करूं। तो अपने ज्ञाति वालों को इकट्ठा करके उनको आदेश दिया कि तुम सब हथियारबंदी होकर के तैयार हो। यदि भरत के मन में पाप होगा तो हम उनकी सारी सेना को यहां मार डालेंगे या संजो की नौकाओं में बढ़ा करके और गंगा जी के जल में सबको डबो देंगे और उसका यदि पवित्र भाव होगा तो पार कर लेंगे। अच्छा मैं परीक्षा करने के लिए जाता हूं और तुम लोग तैयार रहो हथियारबंदी से तैयार रहो। मैं देखता हूं मैं आगे के जैसा आगे करूं वैसा करना। और भेंट लेकर के भरत जी के पास में गई। दूर से आते हुए गुरु को देख करके के सुमंत ने भरत से कहा कि ये भगवान राम का सखा है और इनके साथ में मित्रता है। ये हमारा सिंधु की मित्र राज का शासक करने वाला राजा श्री राम का मित्र है। ये सुनकर के वो उठे और बड़े प्रेम से भाई की माफिक मिले। उसके बाद के मां उन्होंने भेंट रखी और भेंट रखकर के पूछा कि भरत चतुर्घ्न सेना लेकर के चित्रकूट को तुम क्यों जा रहे हो। तुम्हारे मन के मां कोई दूसरा भाव तो नहीं है। भरत ने कहा कि मैं केकई का पुत्र हूं मेरे ऊपर जितनी शंका की जाए उतनी छोड़। मैं चित्रकूट को जा रहा हूँ भगवान राम को वापस लाने के लिए, वे राजा होने के योग्य है, मेरा कोई राज में अधिकार नहीं, और इन सब को साथ में इसलिए ले जा रहा हूँ कि इन सब की मदद से थी भगवान राम को मैं वापस लाने में सफल साथ हूँ। और ये जो भेद है इसके लेने का मेरा अधिकार नहीं है, राजा राम है, राम ही भेंट ले सकते हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ, फिर तेरे संतोष के लिए मैं इसको छू देता हूँ। तो हाथ से छू करके वो भेंट है तो वापिस लौटा और कहा कि वो मैंने सुना है कि भगवान राम एक रात तक यहाँ शिशुपाल के वृक्ष के नीचे रहे, रात्रि में वहीं शयन किया, तो उस वृक्ष को देखना चाहता हूँ, उस स्थान को देखना चाहता हूँ। तो वहां ले गए तो क्या देखते हैं कि शिशुपाल के वृक्ष के नीचे सीता के जल के वस्त्रों से घिरे हुए कुछ तार पड़े हैं और गोल गोल कितने तारे हैं, उन तारों को और तार को लेकर के अपने मस्तक पे लगा और मणिवन में कह रहे थे मुझको धिक्कार है, जिस सीता का दर्शन सूर्य चंद्रमा को और वायु देवता को नहीं होता था वो महलों के बीच में पर्दों में रहा करती थी, आज उस सीता का दर्शन कोल की रात और बन के पशु कर रहे हैं, मुझको धिक्कार। जो सीता महीनों के बीच की माँ समझो कि हिंगलों के ढोलों के ऊपर और मखमल के गिद्धों पर शयन किया करती थी, वो सीता आज समझो कि भूमि पर शयन करती, उषा की काफी बिछा करके और उस पर मेरे कारण सीता आज भूमि पर शयन कर रही। उसके बाद के माँ गो से पूछा कि उनके चरित्रों की बात मुझको कहो, गो बोला कि भरत सायंकाल हो गया जब रात्रि पड़ गई, उस समय में श्री राम ने लक्ष्मण से जल के लिए आज्ञा की और लक्ष्मण जो है सो गंगा जी से जल का लोटा भर गया, जाकर के श्री राम को जल पिला और जल में जो जल बच गया उसको संग उसका पान किया। जब रात्रि पड़ गई तो वीर आश्रम से थे लक्ष्मण जी समझो की चौकीदारी करने के लिए पहरा देने के लिए यह सो बढ़े, मैंने अर्ज की लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम भी सो जा और मैं यात्रियों के सहित पहरा दूंगा, हमारे जाते के लोगों में रात भर पहरा देंगे और तुम भी उसे सो जाओ। तो सीता और राम जब भूमि के मां शयन करते हैं तो मुझको निद्रा कैसे आ सकती, हमारी बात नहीं मान करके लक्ष्मण जी ने रात भर जो है सो पहरा दिया और मैं भी उनके साथ रहा, हमारे जाति के लोग में है भगवान श्री राम के गुणों का गान करते हुए हमने वो रात बिताई। प्रातःकाली सीता राम और लक्ष्मण वहां से आगे को विदा हो, ये सब बात सुन करके कि वरजी बड़ा पश्चाताप करने लगे कि इसमें मैं ही कारण, इसे राम लक्ष्मण और सीता के मन में जाने का और कृष्ण सेने का मैं ऐसो कारण, जिस वक्त में मेरा जन्म हुआ उस वक्त में माता कैकेयी मुझको विष दे देती तो आज श्री राम लक्ष्मण और सीता को यह कष्ट देना क्यों पड़ता, ये सब सुन करके देखे और इसके मन में भी बड़ी दिलानी हुई, गो के मन के माँ कि देख तू तो क्या भाव करता था, इनका कैसा ऊंचा भाव प्रसन्नता के साथ नौकाओं में चढ़ा करके सेना के शेर भरजी को गंगा जी के पार कर दे। इस प्रकार से श्री भरजी महाराज जो रस्ते के मास्टर से मिलते जुलते हुए और प्रश्न करते हुए आगे बढ़े, जैसे सिंधु भरद्वाज ऋषि के आश्रम को पहुंचे, वहां भरद्वाज जी को खबर मिली इस तरह से भरत शत्रुघ्न आ रहे हैं और साथ के मां वशिष्ठ वामदेव आदि ऋषि भी सब हैं। ये कथा उनके शिष्यों ने यानी ब्रह्मचारियों ने जाकर दी तो भरद्वाज जी आए, आकर के सिंधु की वशिष्ठ आदि से बहुत ही आदर सहित मिले। उसके बाद भरत और शत्रुघ्न उनके चरणों में गिर गए और जथा वो सब से मिले। मिलने के बाद से वहां बैठ गए तो भरद्वाज जी ने पूछा भरत से, भरत तुम किस कारण से आए और कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? भरत रोने लगे। भरत ने कहा कि आप भी पूछते हो कि तुम क्यों जा रहे हो, आप तो समझ हो, आप तब के बल से सब कुछ जानते हो, फिर भी हमसे पूछ रहे हो, एक प्रकार से तो हम तो मरेंगे, आप जैसे पुरुषों पर भी हमारा पूरा असर है। भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम तब के बल से जानते हैं तुम भगवान राम को वापस लाने के वास्ते जा रहे, आज ये हमारा आश्रम पवित्र हो गया और तुम्हारा दर्शन करके मैं पवित्र हो गया, हमारे बड़े भारी भाग्य, भारत हमारे तपस्या के फल स्वरूप के मां राम के दर्शन हुए और राम के दर्शनों का यह फल है कि जो तुम्हारे दर्शन हुए। सारे संसार के लोग राम के गुणों का गान करते हैं और राम खुद तुम्हारे गुणों का गान करते हैं। राम ने भी यहां एक दिन एक रात वास किया और हमारी ये तुम्हारे लिए अनुरोध है कि एक दिन रात तुम भी यहां रहो। भक्त की इच्छा तो नहीं थी किंतु दबाव में आ गए, इसलिए रहना स्वीकार कर लिया। भरद्वाज जी ऋषि और सिद्धियों को बुला करके के उनकी पहुनाई की, हाथियों के लिए हाथीशाल, घोड़ों के लिए घोड़सवार, घोड़शाला ये सब रच लिए गए और उनके लिए राजमहल और खाने के लिए बहुत ही समझो कि मेवा और मिष्ठान और पीने के बहुत बढ़िया बढ़िया पदार्थ, खाने पीने के बढ़िया पदार्थ के द्वारा उनकी सेवा की गई और रात के मन सब सहन करने लगे। भूतों के मन में तो ये बात आने लगी कि यदि 5-7 दिन यहाँ रहना हो जाए तो बड़ा आनंद है, किन्तु घर पर शत्रुघ्न आदि जो भगवान के प्रेम भक्त थे उनको तो एक एक क्षण समझो कि युग के समान व्यतीत होता था। एक और विशेष नई बात वाल्मीकि में मिली कि रात्रि के समय के बीच के वहां उनके लिए राजमहल की जो रचना की गई थी, उस राजमहल में मकबर के गद्दे बचे बिछे हुए हैं, राजाओं के राय के सैन्य स्थान बनाया गया। अब भरत जी विचार करने लगे इसमें तो श्री रामचंद्र जी के सैनिक का स्थान है, वो राजा है, ये मेरे लायक नहीं, मैं तो उनका सेवक हूं। तो अपने मन से थी भगवान श्री राम का आह्वान किया और आह्वान करके मन से थे ऐसा आपने समझा कि भगवान राम यहां विराजमान हो रहे हैं और भगवान राम की स्थापना कर करके के और सुंदर की रात भर छत्र और चावल अपने भरत शत्रुघ्न और सब मंत्रियों के सहित अपने छत्र और चावल ऐसा करते हैं। ख्याल करना चाहिए कि कैसा भरजी का भाव प्रातः काल होने के बाद आगे बढ़े, इसलिए बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचे चित्रकूट के बीच के वहां पहुंच करके सात के मां सुमन कहें, ये करा बानवी ग्रामायण की। वहां पहुंच करके के देखते हैं तो कहीं नहीं, सेना को चित्रकूट में ठहरा करके भरत शत्रुघ्न और सुमन ये तीन उनकी खोज में निकले। आगे गए तो आगे उन्होंने ये विचार किया कि मंदाकिनी के ऊपर जल भरने के लिए जरूर आते होंगे, तो वृक्षों की तरफ देखा तो कहीं आपने कपड़ा बांधा हुआ है धजा की माफक की मानो निशानी बना रखी है कि तो उस मार्ग की खोज करी। इस प्रकार से खोज करते करते और वहां उस कुटिया पर जा पहुंचे जहां सीताराम और लक्ष्मण मौजूद थे। मिले बड़े प्रेम से थी समझो कि मेरे पूछा भाई भरत आप कैसे यहां आए। बोलो हम लोग तो अकेले ही नहीं है, साथ के जिसके मां प्रजा जन और ऋषि लोग और माताएं सब कोई आए हैं, सब कोई चित्रकूट में ठहरे हैं। हम आपकी खबर लेने के लिए अकेले यहां खोज करने के लिए आए। बहुत प्रेम से मिले और फिर भगवान राम भी उन सब के साथ वहां आ गए कि जहां समझो कि सब लोग मौजूद थे। सबसे बड़े प्रेम से यथा वो मिले और फिर सबसे पूछा कि आप लोगों का आना कैसे हुआ, तो सारी बात कह सुनाई कि जब आप यहां आ गए तो आपके गृह की व्याकुलता के मां पिताजी ने प्राण का त्याग कर दिया। तो ये सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने एक दिन वहां उपवास किया और पिता का शोक बनाया। शोक बनाने के समय में पिताजी के लिए लहसुए के अपने पिंड बनाकर दिए, क्योंकि वे लहसुए के फल खाया करते थे। उन्हें शास्त्र में बताया है कि जो यजमान के लिए भोजन है वो पितरों के लिए देवतों के लिए दिया जाता है। उस समय तो इसमें कोई एक नास्तिक था, उसने कहा कि ये क्या ये कोई वंशवाल मिलता है। तो भरत जी पिता को कभी दोष नहीं देते थे, राम जी कभी दोष नहीं देते थे, किंतु श्री रामचंद्र जी बोले कि ये हमारा जो मंत्री है इसको पिताजी ने मंत्री के स्थान पर क्यों भर्ती किया, मैं पिताजी की भूल कायम करता हूँ, दोष देता हूँ कि ऐसे नास्तिक मंत्रियों को अपने भर्ती नहीं करना चाहिए था। फिर उस मंत्री ने कहा कि नहीं, मैं तो नास्तिक का स्वान लेकर आपकी परीक्षा कर रहा था, मेरा तो श्राद्ध नहीं है, सब में विश्वास है। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि आप लोग सब क्यों आए हो, सबने कहा कि आपको वापिस लौटाने के लिए आए हैं। भगवान राम ने कहा कि नहीं, पिताजी ने तुम्हारे को जो है सो आपने अयोध्या का राज दिया और मुझको बन का राज दिया है। भक्त ने कहा कि ठीक है, पिताजी स्त्री के बस में होकर के उन्होंने जो कुछ कहा है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, और आपको भी वो बात नहीं माननी चाहिए। श्री राम कहते हैं कि भक्त ऐसा मत करो, पिताजी जो है बड़ी धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, उन्होंने सत का पालन किया, सत के लिए उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया, ऐसे पिता को अपने स्त्री के बस में होकर के उन्होंने हमको बन में निकाल दिया, ऐसी बात मत कहो। पिताजी वृद्ध थे और हमारे पिता थे, राजा थे, सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। भरत ने बहुत कुछ कहा किंतु कभी उनकी बात नहीं मानी। तो भरत जी ने कहा कि आप हमारी बात नहीं मानते हो तो एक प्रकार से थी, यदि ऐसा ही चाहते हो कि पिताजी आज्ञा का पालन नहीं करना है तो ठीक है, पिताजी ने जो कुछ आपको दिया है वो तो मुझको दे दो, मैं और समझो कि शत्रुघ्न जो है मन में जाएंगे और आप वापस लौट जाओ। भरत जी कहते हैं कि नहीं, माता पिता जो है एक प्रकार से थी जो देते हैं वो ठीक भाई भाई दोनों से बदल लेते हैं, किंतु ये उल्ट फेर नहीं हो सकता, पिताजी ने विशेष रूप से यह बात कही है कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष के लिए बनवास, ऐसे पिताजी के वचनों का हम लोग उल्फेर नहीं कर सकते। तब भरत जी ने कहा ठीक है, मैं अनशन बस करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, किंतु अरे बाबू जाकर के मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसी बल पर संजो भंजी आसन बिछा करके बैठ गए, अनशन व्रत आरंभ कर दिया और यह निश्चय कर लिया कि प्रतिज्ञा कर ली कि अपने प्राणों का यहां त्याग कर दूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत ये तुम्हारा करना उचित नहीं है, भगवान के प्रति इस प्रकार से ग्रह करना यह पाप है, इसके लिए तुम्हारे को प्रायश्चित करना चाहिए। और वशिष्ठ जी को कहा कि आप भरत को समझाओ कि ऐसा न करें, तो फिर वशिष्ठ जी उनको समझा, वशिष्ठ जी के समझाने पर वो मान गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम 14 वर्ष की अवधि के आधार के लिए किसी आश्रय दे। तो भरत जी ने अपने भगवान की चरण पादुका रख दी, आप इनको छू दो, ये चरण पादुका राज करेगी।